कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन श्रीपाद परमहंस परिपराज कषाय अष्टोत्तरषट् श्री श्रीमदभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन विविधि फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में छठे स्कंद के सातवें अध्याय पर चर्चा जारी रहेगी। इसके एक श्लोक को दोहराइए। श्री ब्रह्म उवाच, अहो बतसुर श्रेष्ठ यभद्रं वकृतं महत् ब्रह्मेष्टं ब्रह्मणं दान्तम्। ऐश्वर्यानभ्यन्तता श्री ब्रह्म उवाच, अहो बत सुरश्रेष्ठ यभद्रं वकृतं महत् ब्रह्मेष्टं ब्राह्मणं दान्तम् ऐश्वर्यानभ्यन्दत। श्री ब्रह्म उवाच, अहो बत सुरश्रेष्ठ यभद्रं वकृतं महत् ब्रह्मेष्टं ब्राह्मणं दान्तम् ऐश्वर्यानभ्यन्दत। श्री ब्रह्मा ने कहा, अहो ओ बत, बड़ा आश्चर्य है, सुरश्रेष्ठ हे देवताओं में श्रेष्ठ ही निसंदेह अभद्रम अन्याय वह तुम्हारे द्वारा कृतम किया हुआ महत महान ब्रह्मिष्ठम परब्रह्म के प्रति आज्ञाकारी पुरुष ब्राह्मणम ब्राह्मण का दांतम मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला ऐश्वर्य अपने भौतिक ऐश्वर्य से न नहीं अभ्यन्दत उचित रीति से स्वागत किया। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें बताना चाहा कि किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए था। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया, तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं, अतः उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इंद्र का वेर इज इंग्लिश व्हाट पैलेस महल छोड़ दिया, यहाँ महत्व लिखा है, इंद्र का महल छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसीलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य गाते हैं, उसमें कहा गया है, चक्षुदान दिलोजे जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं, अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी मानना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्य से फूल कर अपने गुरु का अनादर किया, अतः श्रीमद् भागवत का उपदेश है, आचार्यं माम विजानीया न वन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए, आचार्य को सामान्य पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Maybe someone can bring some chairs. कुर्सियां और एक दो लग गया है
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा
हरे कृष्णा। तो इस सातवें अध्याय पर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा वैष्णव अपराध के प्रति। बहुत संक्षेप में, विस्तार में तो कर नहीं पाए कि वैष्णव अपराध कैसे बहुत खतरनाक है। चर्चा करते करते हम लोग देख रहे थे कि कैसे पद्म पुराण या अन्य पुराणों में, हरिभक्ति विलास में कैसे वर्णन किया गया है कि हमें किस प्रकार से अपराधों से बचना चाहिए, वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे उनकी जाति के आधार पर हो, उनकी किसी गलती के आधार पर हो, उनके पूर्व में किए गए पाप के आधार पर हो, या जिस गलती की वो गलती को ठीक कर रहे हैं तो उसको बस अभी वो ठीक होने ही वाला है, उसके आधार पर उसकी निंदा पद्म पुराण कहता है करना नहीं चाहिए। तो ऐसे ये निंदाओं से बचना चाहिए, वैष्णवों की निंदा से। वैष्णव अपराध ऐसा अपराध है, श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर कोई पापमय कार्य करता है, हमारी जो शुद्ध कृष्ण चेतना है वो पापमय कार्यों से ढक जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी की चेतना पापमय कार्यों के कारण दूषित हुई है तो थोड़ी बहुत तपस्या करके, भक्ति का पालन करके उससे उसको शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की शुद्ध चेतना वैष्णव अपराध के कारण दूषित हुई है, बहुत मुश्किल है उसको शुद्ध करना, प्रभुपाद लिखते हैं। अर्थात ये जान लीजिए कि अगर हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं तो भक्त हूँ, भक्ति में लगा हूँ, मेरे सारे कार्य भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। कभी कभी आ जाता है ना मन में कि ये तो परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया, वो तो भगवान की योजना थी, मैंने भी किसी का अपराध कर दिया, भगवान की योजना है। कभी कभी ऐसे मन में आ जाता है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम नाम के बल पर पाप करते हैं ये सोच के कि हम तो भक्ति में लगे हैं और हम जो कर रहे हैं वो सही, अहंकार अहंकार हमें पाप करने पर बाध्य करता है। हम तैयार ही नहीं हैं ये स्वीकार करने के लिए कि हम किसी के प्रति अपराध करते हैं, इसीलिए ये अपराध बढ़ता जाता है और शुद्ध चेतना दूषित ही रहती है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं बहुत कठिन है उसको शुद्ध करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्थान पर बताते हैं कि हमारी भक्ति में दो ही बाधाएं हैं, केवल दो बाधाएं भक्ति में आ सकती, अन्यथा भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। भक्ति का नाश तो नहीं होता क्योंकि भक्ति शाश्वत है, इसीलिए किसी भी चीज से भक्ति का नाश नहीं हो सकता। वैष्णव अपराध से भी भक्ति का नाश नहीं होता, लेकिन क्या होता है, जहां है वहीं रुक जाते हैं, प्रगति नहीं होती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दो ही बाधाएं हैं हमारे भक्ति के जीवन में। पहली बाधा वैष्णव अपराध। वो कहते हैं कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो ये पहली बाधा है, इससे भक्ति में रुकावट आ जाती, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर वो अन्य पापमय कार्यों में इत्यादि में लग जाता, भक्ति को छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। लोग भक्ति करने आते हैं, बड़ी गंभीरता से भक्ति करते हैं, बड़े गंभीर हो जाते हैं, 16 माला जप इत्यादि सब करने लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वैष्णव अपराध के कारण उनकी प्रवृत्ति, उनका भाव अन्य चीजों में ज्यादा बढ़ जाता है, अन्य भौतिक भोगों में बढ़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे भक्ति से बाहर जाकर भौतिक जीवन में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। किस लिए? अपराध। ये अपराध है जो हमारे हृदय से भक्ति की रुचि को समाप्त कर देता है। हमें क्यों जप में आनंद नहीं आता, हमें क्यों जप में रुचि नहीं है, क्यों भागवत श्रवण में रुचि नहीं है, क्यों सेवा में रुचि नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर सेवा का भाव ठीक नहीं है तो आपका जप करना व्यर्थ है। आप जप कर रहे हो, सेवा का भाव ठीक नहीं है, जप करना व्यर्थ है। सही भक्ति, सही प्रगति वैष्णवों के आशीर्वाद से होती है। तो इसीलिए ये वैष्णव अपराध बहुत हम सबके लिए बड़े ही खतरनाक हैं। तो पहला बाधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपराध है, क्योंकि उससे सब होता है। वैष्णव अपराध करते हैं, नाम में रुचि चली जाती है। वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों के संग में रुचि नहीं रहती, भागवत श्रवण में रुचि नहीं रहती। फिर हमारा भक्ति का जीवन बचा क्या? ना नाम में रुचि है, ना भागवत श्रवण में रुचि है, ना वैष्णव सेवा में रुचि है। भक्ति बची कहां? क्योंकि भक्ति है क्या? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, भगवान का नाम और जीवों पर दया करना, अर्थात भक्ति का प्रचार करना, भक्तों से अच्छे संबंध रखना, जब यही नहीं है तो भक्ति बची क्या? तो इसीलिए वैष्णव अपराध समाप्त कर देता है, मतलब भक्ति जहां तक है बस वही, आगे बढ़ नहीं पाते, रुचि चली जाती। कई भक्तों को हम लोगों ने देखा है, फिर वो चले जाते हैं बाहर, उनको लगता है कि उनका जीवन अच्छा है। कई बार लोग बाहर जाकर निंदा करते हैं भक्तों की, अरे इस कौन संस्था में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, ये लोग सब ऐसे हैं। अर्थात इतनी ज्यादा दूषित हो जाती है बुद्धि कि वे भक्तों के प्रति बाहर जाकर भी अपराध करना नहीं छोड़ते। क्या भगवान प्रसन्न होंगे इससे? उन लोगों से पूछना चाहिए जो भक्तों की निंदा करते हैं, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कोई कह सकता है लेकिन भक्तों ने गलत किया, वो ठीक है, मगर आप क्यों गलत कर रहे हैं, आप क्यों निंदा कर रहे हैं, क्या आपकी निंदा से आप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं? इसीलिए वैष्णव निंदा। प्रभुपाद लिखते हैं नाम के प्रति अपराधों में सबसे खतरनाक अपराध है वैष्णवों की निंदा और गुरु की अवज्ञा, इन 10 अपराधों में से। तो
तो हम लोग वैष्णवों की निंदा करें, जो पहला अपराध है, किसी भी प्रकार की निंदा, ऐसा नहीं है कि किसी उसके बड़े पाप के लिए हम छोटी छोटी बातों में उनकी निंदा कर देते हैं। अब उसमें हमारा जमता नहीं, क्या बोलते बंबई की भाषा में कहते हैं, जमता नहीं, आपस में मेल नहीं होता, हम एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। सेवा कर रहे हैं, निंदा शुरू हो जाती है, ये सेवा उसने ठीक नहीं की, उसने ये नहीं किया, क्योंकि हमारे मन में भरा हुआ है उनके प्रति द्वेष, इसलिए हर सेवा में हम उनकी निंदा करते हैं, उनको दोष देते हैं। और हर व्यक्ति का यही भाव है, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, और जैसी मैं सेवा कर रहा हूं बाकी दूसरा उतनी ही गलत सेवा कर रहा, ये निंदा है, ये अपराध है, वैष्णव अपराध। खैर, सूची बहुत लंबी है, अगर इस पर चर्चा प्रारंभ की तो आज भी यही विषय चलेगा। तो पहला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार बाधा है वैष्णव अपराध, और दूसरा वो कहते हैं कभी कभी वैष्णव अपराध नहीं होता, जैसे जय और विजय। जय और विजय ये तो वैकुंठ में है, वैकुंठ के कहाँ हैं, द्वारपाल हैं, ऐसे भी नहीं कि वैकुंठ के बाहर खड़े हुए इंतजार, वेटिंग लाइन, अभी उनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, अंदर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, द्वारपाल हैं, भगवान के पर्सनल सेवक, और उनको तीन जन्म या चार जन्म उनको लेने पड़ते हैं असुरों के रूप में, तो क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान की इच्छा, ये दूसरी बाधा है। भक्ति में दो ही बाधाएं हैं, एक वैष्णव अपराध, दूसरा भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा मतलब अगर भगवान चाहते हैं कि वे लोग जाएं नीचे असुर बने, तब तो कोई नहीं रोक सकता, जैसे जय विजय के लिए भगवान ने इच्छा की। ये स्वयं जब वो जय विजय की कथा हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान ने स्वयं कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ, तो इसीलिए भगवान ने इच्छा की। तो हमें जानना चाहिए कि भक्ति में दो ही बाधाएं हैं, तो ये जान लीजिए कि भगवान आपके जीवन में इच्छा नहीं करेंगे बाधा लाने की। अभी हम उतने बड़े भक्त नहीं हुए हैं कि भगवान हमारे जीवन में सीधे लाएं बाधा के, हाँ, और फिर आकर हमको कहें चिंता नहीं करो मेरी इच्छा थी, हाँ, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। तो फिर दूसरा बचा क्या? वैष्णव अपराध। तो इसीलिए हम अपने भक्ति की बाधाओं को कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं कि मेरी भक्ति में बाधा आई क्योंकि मैनेजमेंट ठीक नहीं था, मेरी भक्ति में बाधा आई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी भक्ति में बाधा आई क्योंकि ये नहीं है वो नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सब बेकार, कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, वैष्णव अपराध। उसके कारण हमें सारी चीजें गलत दिखाई देने लगती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ये वैसा हो रहा है या ऐसा है इत्यादि, तो इसीलिए इससे बहुत बचना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करे, पापी भी होगा तो बच जाएगा अजामिल की तरह। अजामिल ने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, पापी भी होगा तो बच जाएगा। लेकिन अगर कोई वैष्णव अपराध करता है और बहुत बड़ा भक्त भी है, कुछ नहीं हो सकता उसका। प्रभुपाद लिखते हैं इसको, कितना ही एडवांस डिवोटी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा भक्त, भक्ति में बढ़ा चढ़ा भक्त कौन होता है? भक्ति में बड़ा हुआ भक्त वो नहीं होता जिसने कई साल भक्ति में बिता लिए, भक्ति में बड़ा हुआ भक्त वो नहीं होता जो किसी मंदिर का अध्यक्ष हो गया, भक्ति में बड़ा हुआ भक्त वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है, हो सकता है लेकिन यही एक प्रमाण नहीं है। भक्ति में बड़े हुए व्यक्ति का प्रमाण है जो वैष्णव अपराध नहीं करता, जो नम्र है, निस्वार्थ भावना है जिसके हृदय में, ऐसा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई दूसरी दृष्टि से भक्ति में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति भी है, वैष्णव अपराध करता है, उसकी प्रगति नहीं होगी। अर्थात यह है कि हम वैष्णव अपराध से बचें ताकि बाकी सारी चीजों से हमें रक्षा हो सके। और हमने कल भी कहा था कि वैष्णव मतलब ये नहीं कि हम जैसे ही वैष्णव शब्द आए तो हम प्रभुपाद के बारे में सोचें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में सोचें, बलदेव विद्याभूषण के बारे में सोचें। वैष्णव शब्द आए तो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें। तो अपराध हमें ये नहीं कि हम प्रभुपाद के प्रति अपराध नहीं करेंगे, विश्वनाथ, हम आपस में एक दूसरे के प्रति अपराध नहीं करेंगे, ये वैष्णव अपराध की सही परिभाषा है। क्योंकि अगर आप आसपास के लोगों को वैष्णव नहीं मान रहे जो भक्ति में लगे हुए हैं, वैष्णव कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल परिभाषा दी, वैष्णव वो है जिसको देखते ही लोगों को कृष्ण का स्मरण आ जाता, वो वैष्णव है। बड़ी सरल परिभाषा। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग परिभाषाएं दी, कनिष्ठ भक्त की, मध्यम भक्त की, उत्तम भक्त की। जिसने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया वो वैष्णव है, ये कनिष्ठ भक्त की परिभाषा उन्होंने दी। लेकिन ये भी कहा कि जिसको देखकर, ये उत्तम भक्त की परिभाषा, जिसको देखकर अन्य लोग भगवान का नाम लें। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास जो भक्त हैं उनको देखते ही लोगों को कृष्ण का स्मरण होता है, तो वो वैष्णव है, उत्तम वैष्णव है। तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए उनके प्रति? तो इसीलिए ये दो बाधाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भक्ति की हैं, हमारे लिए एक ही है, दूसरी नहीं है, वैष्णव अपराध। बस इससे बचना है, बाकी सब कुछ आएगा। तो इंद्र ने वैष्णव अपराध कर दिया, और उसके बाद जब बृहस्पति चले गए, इंद्र को पता चला कि अरे रे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बृहस्पति चले गए सभा से, तो तुरंत वो शोक करने लगे। ये एक भक्त के लिए अनिवार्य है कि अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत हम उसको स्वीकार करें और उस पर पश्चाताप करें, जैसे इंद्र ने किया। इंद्र शोक करने लगा कि हाय मैंने क्या किया, मेरे ऐश्वर्य के कारण, मेरी सत्ता के कारण, मेरी पदवी के कारण मैंने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, मैं उठा नहीं सिंहासन से। हाँ ये ठीक है, अगर कोई राजा समझता है, इंद्र कहता है कि अगर कोई राजा समझता है कि सिंहासन पर बैठे हैं उसको किसी के लिए उठने की आवश्यकता नहीं है तो वो धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता। इंद्र कहता है धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ये सही है कि उसको किसी के लिए उठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण आए, वैष्णव आए, भगवान आए तो उसको बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको उठना चाहिए। ये धर्म के सिद्धांत हैं, इंद्र कहते हैं। और जो ऐसे लोग, इंद्र कहते हैं कि जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, वे लोग ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने पत्थर की नाव में आश्रय लिया हुआ है समुद्र को पार करने के लिए। पत्थर की नाव, वो कैसे आगे बढ़ेगी? पत्थर की नाव तो डूबेगी निश्चित। तो जिन लोगों ने, वो कहते हैं कि जो लोग ऐसे हैं और जिन लोगों ने इनके अनुयायी हैं वे सब पत्थर की नाव में हैं। मतलब जो वैष्णव अपराध कर रहा है वो तो डूबेगा ही, उसके साथ रहने वाले सारे डूबेंगे क्योंकि वो उसका साथ दे रहे हैं वैष्णव अपराध में। तो इंद्र कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पहला चीज भक्त को ये करना चाहिए कि अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाए, देखिए हमने आपको कल कहा था ये जो कथा है बहुत सारे निर्देशों को हमें देगी, अभी आगे 6-7 अध्यायों में बहुत सारे निर्देश भक्ति के लिए, बड़े व्यवहारिक निर्देश। तो अगर हमसे अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्वीकार करें, जैसे इंद्र स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी तकलीफ ये है कि हम स्वीकार ही नहीं करते, हम अपराध करते रहते हैं। कोई कहे भी हमें कि अपराध कर रहे हैं, हम हृदय से स्वीकार नहीं करते। हम सोचते मुझसे तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता, मैं 25 साल से ब्रह्मचारी या जो भी है सन्यासी, मुझसे अपराध हो ही नहीं सकता, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हूं मैं, जो मैं कहता हूं वो सही है। अहंकार, तो अहंकार के कारण हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया। इंद्र हमें ये दिखला रहे हैं मार्ग कि इंद्र की पदवी पर बैठे हैं, राजा हैं देवताओं के, लेकिन जैसे ही अपराध हुआ तुरंत स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गलती हो गई, मैंने गलती की, और हृदय से कर रहे हैं। ये इंद्र दिखावा नहीं कर रहे हैं या किसी के कहने पर शोक प्रकट नहीं कर रहे हैं, उनको हृदय में लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। एक भक्त के लिए आवश्यक है अगर वैष्णव अपराध हो जाए तुरंत स्वीकारें, पश्चाताप करें कि मैंने क्या किया। कब करेंगे ये? जब हमें पता होगा कि वैष्णव अपराध कितनी बड़ी बाधा है भक्ति में। कब करेंगे ये? जब हम ये याद रखेंगे कि भक्ति में हम कृष्ण को प्राप्त करने आए हैं। कब करेंगे ये? जब हमें ये याद रहेगा कि ये हमारा मन दूषित है, हम इसे शुद्ध करने आए, हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है, हम यहां अपनी सत्ता जमाने, धन कमाने, मान सम्मान पाने नहीं आए हैं, हम कृष्ण को पाने आए हैं। जब इस उद्देश्य को याद रखेंगे तब पश्चाताप होगा कि जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए स्वीकारिए, हम सब में ये कमी है। हम कोई गलती कर देते हैं, कोई आके बताते हैं प्रभु जी आपने नहीं नहीं एक्चुअली उसने किया था, उसके कारण ऐसा हो गया। हम अपने ऊपर कभी कोई गलती लेना नहीं चाहते, दूसरों पर डालना बड़ा आसान है। अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मैं क्या करूं, ये आया नहीं ये ऐसे क्यों हुआ, ये उनकी गलती है। हमें सबसे पहले स्वीकारना चाहिए कि हाँ क्षमा कीजिए गलती है मेरी, जैसे इंद्र कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज इंद्र ने क्या की, तो इंद्र ने स्वीकारा पहले तो, और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा और बृहस्पति के चरणों में अपना सर रखकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ये अगली चीज करनी चाहिए एक भक्त को जिससे वैष्णव अपराध हो जाए, कि पहले तो वो स्वीकार कर ले। हम आपको इतना यहां पर हमने इतना वर्णन किया, लेकिन आपको अभी भी बता रहे हैं कि हमारा जो मन इतना दूषित है, इतना सुनने के बाद भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमसे कोई गलती हुई है। हम दूसरों को कहेंगे, आज सुना था भागवत में, सुना था ना, स्वीकार करो गलती। हम दूसरों को कहेंगे, खुद स्वीकार करने तैयार नहीं। माया बहुत प्रभावी है, तो इसीलिए स्वीकार करें। और दूसरा क्षमा याचना। वैष्णव अपराध का एक ही उपाय है, क्षमा याचना। दुर्वासा मुनि एक साल तक भाग रहे थे वैष्णव अपराध करके। और वो कौन है दुर्वासा मुनि? हम लोग तो कह देते दुर्वासा मुनि भागे, लेकिन है कौन वो? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दुर्वासा मुनि, शिवजी के अंश हैं और इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं। हम लोग क्या हैं उनके सामने? कुछ नहीं। हम लोग तो ऐसे कथा कहने में अम्बरीश महाराज के, दुर्वासा जी, दुर्वासा ने अपराध किया। अरे है कौन दुर्वासा? कोई साधारण व्यक्ति है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? इतने श्रेष्ठ व्यक्ति होते हुए जब उन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया, एक वर्ष तक भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। सुदर्शन चक्र उनके पीछे था। प्रश्न आता है मन में, सुदर्शन को एक वर्ष लगा उनको मारने के लिए? एक वर्ष तक सुदर्शन क्यों पीछे था? सुदर्शन को कितनी देर लगती है किसी को समाप्त कर? सुदर्शन है क्या भगवान की शक्ति है, भगवान के आयुध है? तो उनको एक वर्ष तक भाग रहे, मतलब दुर्वासा की इतनी शक्ति थी कि एक वर्ष तक सुदर्शन को बचा सके, सुदर्शन से अपने आप को, ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है कि भगवान चाहते नहीं थे मारना, भगवान ये चाहते थे दिखाना कि वैष्णव अपराध से अगर बचना है तो उसका उपाय क्या है। उसका उपाय सुदर्शन चक्र नहीं है, भगवान बताना चाहते थे। सुदर्शन चक्र से तो भगवान कभी भी किसी को भी मार सकते हैं, उसका उपाय क्या है? तो एक वर्ष तक भागे, सबके पास गए बचने के लिए, जिससे भी क्षमा मांग सकते थे। इतना ही नहीं, भगवान के पास भी गए वैकुंठ में। वो जिस वैकुंठ में गए थे वो प्रपंचिका वैकुंठ है, तो वैकुंठ में भी चले गए। वहां पर जाके भगवान से क्षमा मांगी, ये आपका ये आयुध है, इसको इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए सुदर्शन से। भगवान ने कहा सॉरी, क्षमा चाहता हूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है जाओ भक्तों से मांगो, जिसके प्रति अपराध किया है उससे ये दिखलाने के लिए सुदर्शन ने मारा नहीं, नहीं तो सुदर्शन को मारने में कितने क्षण लगते हैं किसी को, थोड़ी एक वर्ष तक सुदर्शन, इतनी शक्ति नहीं है सुदर्शन में कि मार सके। ये दिखलाने के लिए कि भक्त के पास ही तुम्हारी तुम्हारे अपराध का उपाय है। तो फिर भागे भागे आए अम्बरीश महाराज के पास और उनसे उन्होंने क्षमा याचना की। और फिर अम्बरीश महाराज ने बड़ी नम्रता से सुदर्शन से प्रार्थना की, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये मार्ग है जिसे हमें सीखना है। तो क्या मार्ग है? पहली चीज, हम अपराध ना करें, इतना कल हमने इसीलिए कहा और आज भी थोड़ा। फिर गलती से हो भी जाए अपराध तो तुरंत उसको स्वीकार करें और फिर जाकर क्षमा याचना करें। तो बृहस्पति के पास मैं जाऊंगा, इंद्र कहने लगे, गुरु के पास जाऊंगा, अपने अपने मस्तक को उनके चरणों में रख कर उनसे बड़ी नम्रता से क्षमा की याचना करूंगा। ये क्यों कहा इंद्र ने? इसलिए कि हमें क्षमा याचना बड़ी नम्रता से करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अब क्षमा मांग ली ना अब और क्या है। हाँ, कभी कभी लोग इस भाव में करते हैं, ये ठीक है ना, बोल दिया ना सॉरी, अब क्या। ये कोई भाव नहीं है, हमें इतने नम्र भाव में, इतने इतने दीन भाव में क्षमा मांगनी चाहिए कि वैष्णव का हृदय पिघले। तो हमें ऐसे क्षमा मांगनी चाहिए हृदय से कि मुझसे गलती हो गई, अपराध हुआ, क्षमा कर दी। आप अगर क्षमा नहीं करेंगे तो मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा, इस भाव में। इसलिए नहीं कि ठीक है किसी ने कहा है चले अच्छा ठीक है सॉरी, ज्यादा वो बोले अरे ये कोई तरीका सॉरी और क्या, अभी क्या करूंगा, दंडवत करूंगा और क्या करूंगा, प्रेम से। तो इसलिए इंद्र बता रहे कि अपना मस्तक रखूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनसे क्षमा याचना करूं। तो इंद्र चले गए बृहस्पति के पास, लेकिन बृहस्पति ने देखा और बृहस्पति चाहते थे कि इंद्र को पूरी तरह से इस अपराध से मुक्त करें, क्योंकि अगर अभी उसको क्षमा कर देंगे तो हो सकता फिर कर ले अपराध। इसलिए बृहस्पति गायब हो गए, वहां से अंतर्धान हो गए। इंद्र ढूंढ रहे हैं, देवता ढूंढ रहे हैं, कहाँ है बृहस्पति, कहाँ है बृहस्पति, है ही नहीं, चले गए। अब तो इंद्र को बड़ा दुख हुआ। और जैसे ही असुरों को पता चला, दानवों को पता चला कि इनके गुरु चले गए हैं, शुक्राचार्य जी के जितने शिष्य थे उन्होंने कहा आक्रमण करो, अभी समय है। अर्थात जब तक गुरु की कृपा बनी हुई थी असुर भी जीत नहीं पाए देवताओं को, लेकिन जब गुरु की कृपा हट गई असुरों ने कहा बहुत बढ़िया समय है आक्रमण करो, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। परास्त हो गए सारे देवता, किसी के हाथ कटे, किसी के पांव कटे, धार धार मार रहे देवताओं, कुछ नहीं कर पा रहे, कारण गुरु की कृपा नहीं है। तो ये हमें जानना चाहिए कि जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, हमारे ऊपर से वैष्णवों की कृपा हट जाती है तब आक्रमण होता है। जैसा देवताओं पर असुरों का आक्रमण हुआ, हमारी चेतना पर भौतिकता का आक्रमण होता है, तब हम उस जिस चीज से दूर रहना चाहते हैं वही चीज हमें आक्रमण करती है, फिर हम संभाल नहीं पाते, देवता बचा नहीं पाए अपने आप को। देवता हैं, इस जगत को चलाते हैं, वो अपने आप को बचा नहीं पाए, गुरु की कृपा नहीं है। तो इसीलिए इसको जानना चाहिए कि जैसे ही हम अपराध करेंगे हमारे से कृपा हट जाएगी, और जैसे ही कृपा हटेगी आक्रमण होगा। असुरों ने आक्रमण कर दिया, परास्त कर दिया, भागना पड़ा देवताओं को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं भक्ति करते हुए, मतलब हम कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध कर रहे हैं, हमारे ऊपर से गुरु की कृपा हट गई है। इसलिए हमको ये भक्त को अपने हृदय में चिंतन मनन करना चाहिए कि अगर मेरे हृदय में ऐसी भावनाएं बहुत आ रही हैं तो उसका कारण क्या है। एक ही कारण है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, वैष्णव अपराध, और कोई बाधा नहीं है, कोई चीज आपकी भक्ति को रोक नहीं सकती। अगर कुछ रोक सकता है तो वो वैष्णव अपराध। तो इसलिए भक्त को ये हृदय में अब जब उसको पता है कि उससे अपराध हुआ, और या फिर इच्छाएं बड़ी बढ़ रही हैं, भक्ति कर रहा है लेकिन भौतिक इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, मतलब वैष्णव अपराध हो रहा है कहीं, क्योंकि आक्रमण हो रहा है मेरे ऊपर भौतिकता का, बाहरी आकर्षण का, कृष्ण के विरुद्ध जितनी भी चीजें हैं उनका, फिर वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, मान सम्मान पाने के लिए हो। कभी कभी भक्त के साथ, कभी कभी भक्त को ऐसा हो जाता है, भक्ति करते करते उसको बड़े मान सम्मान की कामना हो जाती है, करे मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये भी नहीं कोई कहता, मुझे ये नहीं करता कोई, मुझे दंडवत नहीं करता कोई, ये भी नहीं देता। सर, भक्त को होना चाहिए कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला कोई चिंता नहीं, तो मान सम्मान की कामना हो जाती है, या फिर धन की कामना, भक्ति करते करते होता है कि थोड़ा धन होना चाहिए, या और कोई भी कामना, ये सारे आक्रमण हैं। तो जैसे असुरों ने आक्रमण कर दिया सुरों पर, देवताओं पर, ऐसी भौतिक इच्छाएं हम पर आक्रमण कर देती हैं, कब, जब गुरु की कृपा हट जाती है। तो बृहस्पति चले गए, देवता हारे, और फिर सब भागे ब्रह्मा जी के पास कि ये क्या हो गया, हम तो हार रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास भागे, अर्थात एक भक्त को जब हृदय में बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाएं, कामनाएं बढ़ जाएं, भक्ति के विरुद्ध चीजों की ज्यादा उस इच्छाएं हो जाएं, तो उसको भागना चाहिए गुरु के पास या वरिष्ठों के पास। जैसे सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ये क्या हो रहा है ब्रह्मा जी, कुछ कीजिए, तो जाना चाहिए, अपना हृदय खोलना चाहिए। भक्ति में भक्तों के साथ हृदय खोलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है कि भक्तों में अगर प्रेम होना है तो उनमें हृदय को खोलना और उनके हृदय से सुनना ये बहुत आवश्यक है। गुह्यम आख्याति प्रच्छति, जो गुह्य बातें हैं हृदय में उसको हम भक्तों से कहें और भक्तों की बातें सुनें। तो ऐसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और श्री ब्रह्मा उवाच, आज के श्लोक में हमने पढ़ा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे कुछ सुना नहीं, पहले डांटा। अभी श्लोक में हमने पढ़ा ना, ब्रह्मा जी डांट रहे हैं, तुमने अपराध कर दिया, अरे तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग श्रेष्ठ हो, इस जगत के, इस दुनिया को चलाने वाले हो, तुमको अधिकार दिया गया है और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ लोगों ने अपराध कर दिया, ये बहुत बुरी बात है। तो ये देखिए गुरु का कार्य है, पहले डांटते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा जी ने गले से लगा, कोई बात नहीं, क्या हुआ, अरे असुरों को मैं अभी कम अपना ब्रह्मास्त्र भेजता हूं, सब नाश हो जाए। नहीं, उन्होंने डांटा, तुम्हारी गलती है, क्या किया तुमने, बृहस्पति जैसे जो ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसकी पूरी निष्ठा है ब्रह्म में, या ब्रह्मणी बहुत अच्छी तरह से जो ब्रह्म को जानते हैं, पर ब्रह्म को, अर्थात जो वैष्णव है उनके प्रति अपराध कर दिया तुमने, उनका अपमान कर दिया, वो आए और आप उठकर नहीं खड़े हुए। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना, ये बहुत होता, प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि देवता ने सोचा रोज आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन उनको प्रणाम नहीं किया था। तो ब्रह्मा जी बड़े उनको गुस्सा हो रहे हैं कि ये तुमने क्या किया। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो तुम लोग देवता हो, लेकिन ये जान लो कि जब तक कोई व्यक्ति तीन चीजों की या तीन लोगों की पूजा नहीं करता और उनकी सेवा नहीं करता, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। और तीन चीजें हैं, वैष्णव, गाय और भगवान। इन तीनों की पूजा होनी चाहिए, इन तीनों की सेवा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो तुमने वैष्णवों का अपराध कर दिया, बाकी भगवान और गायों की तो सेवा तुम लोग करते ही नहीं हो, ऐसे शायद वो कह रहे, और भगवान कहाँ से प्रसन्न होंगे तुमसे, ब्रह्मा जी कह रहे। ऑफकोर्स इंद्र के राज्य में गौशाला होनी चाहिए, लेकिन सुना नहीं कहीं पे कि वो इंद्र जाके दूध निकाल रहे हैं या गोबर साफ कर रहे हैं, कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्वर्ग में नहीं हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इन तीन लोगों की पूजा निश्चित करनी चाहिए और इनमें बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर इन तीन लोगों में आप में श्रद्धा है, वैष्णवों में, गाय में और भगवान में, और इन तीन लोगों की आप पूजा करते हो, निश्चित सफलता आएगी। तो इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है श्रद्धा। कल हम वर्णन कर रहे थे चार चीजों का जो भक्ति में बाधाएं हैं। तो हमने तीन का कल वर्णन किया था, चौथे का अब करेंगे क्योंकि अब वो विषय आया। तो तीन किसी को याद है हमने कल क्या कही थी बाधाएं, चौथी नहीं कह पाए थे? या तीन तरह से भक्ति में बाधाएं आ जाती हैं, पद्म पुराण कहता है, और हम लोग अपराध कर बैठते हैं। शुद्धता क्या होनी चाहिए नहीं होनी? हाँ नहीं, शुद्धता होने से अपराध होता है, शुद्धता की कमी से, शुद्धता से नहीं, शुद्धता की कमी से। ओके, दूसरा, बहुत अच्छा, और कोई बताइए? आदर की कमी से, बहुत अच्छा। और तीसरा? प्रयास की कमी से। मानती जी ने लिखा हुआ है शायद, हाँ, प्रयास। तो ये चार चीजें, तो कल हम लोग चर्चा की थी, शुद्धता की चर्चा हो गई, भगवान की सेवा में शुद्धता होनी चाहिए। दूसरी चर्चा हमने की कि आदर, भगवान को हमेशा आदर देना चाहिए, कैसे उनके सामने करना, क्या, कल थोड़ी बहुत चर्चा की। और प्रयास, उसकी भी चर्चा की, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अभी, रथ यात्रा करने के लिए इतनी सारी चिंताएँ लेनी चाहिए। और चौथा है श्रद्धा की कमी। अगर श्रद्धा की कमी है तो भी हम लोग अपराध करते हैं, और इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं तीन लोगों में श्रद्धा जरूरी है, वैष्णवों में और गाय में और भगवान में। तो जिस व्यक्ति ने, जिसके अच्छे कार्य नहीं हैं, उसका विश्वास कभी नहीं होता इन चीज़ों में। स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिसके स्वल्प पुण्य, स्वल्प मतलब बहुत थोड़े बहुत, उसने कभी कुछ अच्छा काम ही नहीं किया, स्वल्प पुण्य, तो उसको विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं वह जायते, जायते मतलब उत्पन्न नहीं होता, जन्म नहीं लेता। तो किसको, किस में जन्म नहीं लेता, किस में विश्वास नहीं होता? महाप्रसाद में, नाम में, वैष्णवों में, भगवान में, राइट? तो भगवान में, तो जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता, वैष्णवों में विश्वास नहीं होता, उसका कुछ नहीं। उसका अर्थ है कि उसके भी भाव पुण्य कम है। स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासों ने वो जाए थे। तो इसलिए श्रद्धा चाहिए इन तीन चीजों में, इन तीन लोगों में, और इनकी पूजा करनी चाहिए। तो वैष्णव, गाय और भगवान, इनको ब्रह्मा जी कहते हैं बस इनकी पूजा करो, सब कुछ सफल होगा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, फिर भी अब आए हैं मेरे पास तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, उपाय देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी डांट के भगा सकते, चले जाओ तुम लोग सब बेकार लोग, कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो डांट दिया उनको, बताया कि तुम्हारी क्या गलती है, फिर कहा कि देखो अभी जो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं, अर्थात जो असुर हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं अपने गुरु की पूजा करके। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने अपने गुरु की इतनी अच्छी पूजा की है कि इस समय वो मेरे धाम को भी जीत सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं वो। सोचिए, ब्रह्मा जी का धाम, ब्रह्मा जी बैठे खुद कह रहे हैं, बोले मेरे भी लोक को वो जीत सकते हैं, ब्रह्म लोक को भी, इतनी शक्ति आ गई है केवल गुरु की पूजा करने से। तो इसलिए इस समय आप उनको हरा नहीं सकते। तो आप क्या कीजिए, आप विश्व रूप को गुरु बनाइए ब्रह्मा जी ने, क्योंकि आपके गुरु नहीं है, गुरु नहीं है तो शक्ति कहां से आएगी? उनके पास शक्ति है, गुरु की पूजा कर रहे हैं, आप लोग गुरु पूजा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रोज गुरु पूजा में आना चाहिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं गुरु पूजा होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा गुरु पूजा नहीं कर रहे हो आप लोग, गुरु ही नहीं है, पूजा कहाँ से करोगे? तो इसीलिए इनमें शक्ति हो गई है, आप विश्व रूप को अपना गुरु बनाइए, उसको स्वीकार कीजिए, और फिर वो आपको शक्ति प्रदान करेंगे। तो सारे देवता फिर चले गए विश्वरूप के पास। अब विश्वरूप इनसे बड़े छोटे हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी छोटे को, समझ लीजिए कि कोई बड़े होते हैं उम्र इत्यादि में, उनको किसी छोटे को जाके बोले गुरु बनो तो बड़ा ऑड लगता है जी। किसी बड़े को तो हम आराम से कह दें, कोई वृद्ध आदमी है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, 70-80 साल के हैं, उसको तो आराम से आप गुरु हैं। लेकिन 60-70 साल का व्यक्ति किसी बच्चे को जाके कैसे बोले कि तुम गुरु बनो। लेकिन सारे देवता गए और देवताओं ने प्रणाम किया और विश्वरूप बैठे थे, तो उन्होंने विश्वरूप से कहा कि हम सब आपके पास आए हैं और कुछ मांगने आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरु बने, आप हमारे पुरोहित बने, आप इसको स्वीकार कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि आप छोटे हैं तो इसलिए आपको स्वीकारना नहीं चाहिए, पहले ही देवताओं ने कह दिया, ये मत सोचिएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि भक्ति के ज्ञान में उम्र नहीं देखी जाती, आप हमसे उस चीज में बड़े हैं, अर्थात वेद के ज्ञान में, शास्त्र के ज्ञान में आप हमसे ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आप गुरु हो सकते हैं, उसमें उम्र नहीं देखी जाती, देवता कहते हैं। वो पहले ही बता रहे हैं क्योंकि उनको पता था विश्वरूप यही कहेंगे, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप लोग इतने बड़े हैं, मैं कैसे आपका गुरु बनूं। तो पहले ही देवताओं ने कहा कि ये उम्र उसमें नहीं देखी। हाँ, पद्धति में, साधारण परंपराओं में वृद्ध व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन जब गुरु की बात आती, ज्ञान की बात आती है, तो ज्ञान केवल उम्र से नहीं आता। इसलिए आप ये मत चिंता करना, हम सब आपके पास आए हैं, आपको हमारा गुरु बनना है, आपको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तो विश्वरूप कहते हैं उनसे कि वैसे तो किसी का पुरोहित बनने से सारे जितने पुण्य हैं वो नाश हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पुरोहित बनता है, मतलब किसी के लिए कुछ करने के लिए बनता है, तो सारे पुण्य नाश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप सब लोकपाल हैं, आप सब पूरे जगत को चलाने वाले हैं और आप मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, भले ही मेरा कुछ नुकसान भी हो, लेकिन मैं आपका पुरोहित बनूंगा। और ऐसे कहकर उन्होंने स्वीकार किया और फिर उन्होंने देवताओं को एक बहुत शक्तिशाली मंत्र दिया। मंत्र क्या था? ये पूरा कवच था उनके शरीर के लिए, इसीलिए इसको नारायण कवच कहा गया। तो उन्होंने नारायण कवच नाम के स्तोत्र को कहा, जिससे देवता पुनः शक्तिशाली हो गए, उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। तो ऐसा ही इस अध्याय के अंत में कहा गया कि विश्वरूप ने ये नारायण कवच उनको दिया। अब अगले अध्याय में परीक्षित महाराज यही प्रश्न करेंगे कि ये नारायण कवच क्या है, आपने नारायण कवच बोल दिया तो ये क्या है। तो फिर अगले अध्याय में ये नारायण कवच क्या है, कैसे ये मंत्र है, कैसे ये शक्तिशाली है, इसका वर्णन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।